ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद सरकार गठन के लिए नई दिल्ली में सरगर्मियां तेज। एनडीए नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। आईएनडीआई गठबंधन की बैठक भी जारी। दिल्ली में भाजपा ने एक बार फिर लोकसभा की 7 सीटें जीती। दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। दिल्ली विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में सबसे ऊपर। आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग में भी 47 अंकों का सुधार। और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ओपन लर्निंग में पौधरोपण अभियान चलाया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने सरकार गठन के प्रयास तेज कर दिए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नेताओं ने आज सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। नई दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दौरान पिछले 10 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि देश की जनता ने 6 दशकों के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत नेतृत्व चुना है। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार देश के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करती रहेगी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह शामिल हुए। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल बैठक में शामिल थीं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी, जनता दल सेक्युलर नेता एचडी कुमारस्वामी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी, जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण और अन्य सहयोगी दलों के नेता भी उपस्थित थे। आईएनडीआई गठबंधन की भी चुनाव नतीजों और आगे की रणनीति पर विचार के लिए आज दिल्ली में बैठक हो रही है। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव तथा अन्य नेता उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने नई सरकार बनने तक प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पद पर बने रहने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोपहर बाद हुई अपनी बैठक में राष्ट्रपति को 17वीं लोकसभा तुरंत प्रभाव से भंग करने की सलाह दी थी। राष्ट्रपति अब से कुछ देर में नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में निवर्तमान कैबिनेट मंत्रियों के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। 543 सदस्यों वाली लोकसभा के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं। भाजपा ने अकेले 240 सीटें हासिल की हैं। तेलुगु देशम पार्टी को 16 और जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली हैं। आईएनडीआई गठबंधन ने 233 सीटें जीती हैं। अन्य के खाते में 18 सीटें गई हैं। कांग्रेस को 99 सीट मिली है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 29 और डीएमके ने 22 सीटों पर विजय हासिल की है। दिल्ली में भाजपा ने एक बार फिर सभी 7 सीटों पर विजय हासिल की है। एक रिपोर्ट।
भाजपा ने दिल्ली में अपनी जीत का परचम जारी रखते हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों में एक बार फिर हैट्रिक लगाई है। भाजपा के योगेंद्र चंदोलिया ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर अपने प्रतिद्वंदी उदित राज से 2,90,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। योगेंद्र चंदोलिया को कुल 8,66,483 मत मिले हैं। वहीं पश्चिमी दिल्ली सीट पर भाजपा की कमलजीत सहरावत 1,99,000 मतों के अंतर से जीती हैं। कमलजीत सहरावत को कुल 8,42,658 वोट मिले हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर भाजपा के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी 1,38,000 से अधिक मतों से विजयी हुए हैं। उन्हें 8,24,451 मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस के कन्हैया कुमार को इस सीट पर 6,85,673 मत मिले हैं। भाजपा के रामवीर सिंह विधूड़ी ने दक्षिणी दिल्ली सीट पर 1,24,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है और उन्हें कुल 6,92,832 मत मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सही राम को 5,68,499 मत मिले हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल ने 5,16,496 मतों के साथ जीत हासिल की है। भाजपा के हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली सीट पर 6,64,819 मतों से विजयी हुए हैं। वहीं नई दिल्ली सीट पर भाजपा की बासुरी स्वराज ने 4,53,185 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को इस सीट पर 3,74,815 वोट मिले हैं। दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। प्रादेशिक समाचार के लिए रईस उद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अन्य राज्यों में आपसी लड़ाई के कारण INDIA दिल्ली में सभी सीटें हार गया है। श्री सचदेवा ने कहा कि पंजाब जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेदों के कारण उन्होंने दिल्ली में अपनी विश्वसनीयता खो दी। श्री सचदेवा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसकी आगामी जीत का सूचक है।
आपको यकीनन दिल्ली ने संकेत दिया है और दिल्ली इस भ्रष्टाचारी गठबंधन को बाहर करना चाहती है, इसलिए उन्होंने इस अवसरवादी गठबंधन को बाहर किया और दिल्ली की विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत के साथ आई।
दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से नव निर्वाचित सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की जीत पार्टी के निरंतर प्रयासों का परिणाम है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को अनेक विकास के तोहफे दिए। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर में मोदी जी की सरकार बना रही है। आज दिल्ली के लोग 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में देहरादून, जयपुर और चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, 10 घंटे में द्वारका से मुंबई पहुंच रहे हैं। दिल्ली को मोदी जी की सरकार ने तीसरा रिंग रोड दिया जिसके ऊपर 14,000 करोड़ रूपया खर्च हो रहा है। 26 फ्लाईओवर्स हैं, 18 अंडरपास हैं। दिल्ली की तकदीर बदल जाएगी।
आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को उत्साहजनक बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में देश बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और INDIA गठबंधन को जिताने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान डॉ पाठक ने ये बात कही।
विधानसभा का चुनाव, कॉरपोरेशन का चुनाव और लोकसभा के चुनाव के अपने अलग कैरेक्टर होते हैं। आप इसको पुरानी हिस्ट्री, इलेक्शन हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव को अगर आप इस बार से कंपेयर करेंगे तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर आप विधानसभा से कंपेयर करेंगे तो इसमें डिक्रीज हुआ है, लेकिन जिन परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा पहली तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें अद्भुत परिणाम आए थे, आपको विधानसभा के चुनाव में उसको कंपेयर करना चाहिए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उन्हें चिकित्सीय जांच के आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत देने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे न्यायिक हिरासत के दौरान श्री केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखें। उनकी नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का 2 दिन का वार्षिक नीति संवाद शिविर आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य NCC की विस्तार योजना की प्रगति की समीक्षा करना था।
इस अवसर पर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने युवा भारतीयों को प्रेरित करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में एनसीसी की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने एनसीसी के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स कार्यों को बढ़ाने के लिए पिछले एक साल में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में भी बताया। महानिदेशक ने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक विकास में सार्थक योगदान के लिए सभी निदेशालयों के लिए संस्थागत प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। अर्पिता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरुणा।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पहला स्थान और देश भर के अन्य संस्थानों की सूची में सातवां स्थान प्राप्त किया है। IIT दिल्ली ने विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 47 अंकों का सुधार करते हुए 150वां स्थान हासिल किया है, जो पिछले वर्ष 197वें स्थान पर था। एक रिपोर्ट।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि भारत के शीर्ष 10 संस्थानों में दिल्ली विश्वविद्यालय ने 79 रैंक ऊपर सबसे अधिक प्रगति की है। इस उपलब्धि के लिए कुलपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी विभागों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन से दिल्ली विश्वविद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में वैश्विक स्तर पर 328वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष 407वें स्थान पर था। रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और पर्यावरण के मुद्दे पर कार्य करने को लेकर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में करोड़ों पेड़ लगाने के लिए अनूठा जन आंदोलन बनाना है। उनके साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना उपस्थित थे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी आज सिविल लाइन्स में पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली समेत पूरा देश भीषण गर्मी का सामना कर रहा है, इसलिए लोगों को अपने घर की छतों पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सोल में पर्यावरण अध्ययन विभाग ने उत्तरी परिसर में पौधरोपण अभियान चलाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर करना था। इस दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पौधा भेंट कर विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की निदेशक प्रोफेसर पायल मागो ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। हरियाणा के वन विभाग ने 75 वर्ष से अधिक आयु के प्राण वायु देवता वृक्षों की पूजा कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। दिल्ली में तेज धूप के कारण लोगों को आज भी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहते हुए 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहते हुए 31 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादल छाये रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। भीषण गर्मी होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। कल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद सरकार गठन के लिए नई दिल्ली में सरगर्मियां तेज। एनडीए नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। चुनावी नतीजों पर विचार के लिए INDI गठबंधन की बैठक भी जारी। दिल्ली में भाजपा ने एक बार फिर लोकसभा की 7 सीटें जीती। दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। दिल्ली विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में सबसे ऊपर, आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग में भी 47 अंकों का सुधार। और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूलों ऑफ ओपन लर्निंग में पौधरोपण अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।